नीति वचन अध्याय 31, अध्याय 31 पद 1, लेमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। ये वचन राजा लेमुएल की माता के हैं, जो उसने अपने पुत्र लेमुएल को सिखाए थे। एक धार्मिक माता की सलाह जो उसने अपने बेटे राजकुमार को दी कि वो एक दिन राजा बनेगा। ऐसे कुछ लोग भी हैं जो लेमुएल को सुलेमान मानते हैं और ये वचन बेतशेबा ने सुलेमान को सिखाए थे। ये बात धर्मशास्त्रियों के बीच विवाद का विषय है और मैं विवाद में पड़ना नहीं चाहता। लेमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। नीति वचन अध्याय 31 पद 2 से लेकर 4 तक। हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना बल स्त्रियों को न देना, न अपना जीवन उनके वश कर देना, जो राजाओं का पौरुष खो देती है। हे लेमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फापता। धर्मशास्त्र के नए नियम में हम देखते हैं कि जो लोग कलीसिया में अगुवाई करते हैं उन्हें दाख मधु नहीं पीना चाहिए। पहला तिमोथियुस 3 अध्याय 1 से लेकर 4 पद। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है, सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो। इसलिए उन लोगों को जो कलीसिया की अगुवाई करते हैं दाक मधु नहीं पीना चाहिए। यहां हमें बताया गया कि राजाओं के लिए दाक मधु नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उनका मन किसी भी ऊपरी प्रभाव से प्रभावित हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपके न्याय पर कोई छाया पड़े। वो चाहता है कि आपका मन एकदम शुद्ध रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अस्पष्ट मस्तिष्क से वार्तालाप करें। उन लोगों से वार्तालाप करना भी कठिन होता है जो नशीली दवाओं या दाक मधु के नशे में होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं, और ना ही उनके कहने का कोई अर्थ होता है। वे नहीं जानते कि वे किस से बात कर रहे हैं। उनको सलाह देना भी बेकार होता है, क्योंकि वे ठीक विषय पर बात नहीं कर रहे होते हैं। मुझे शुद्ध मन रखना पसंद है, ऐसा मन जो किसी भी प्रभाव से, शक्ति से या और किसी चीज से प्रभावित ना हो। मैं ठीक से सोच सकूं। मैं नहीं समझता कि क्यों व्यक्ति अपने मस्तिष्क पर धुंधलापन लाना चाहता है या अपनी चेतना को बदलने का विचार रखता है। मुझे शुद्ध मन से सोचना अच्छा लगता है। मैं अपने मन को धुंधला और अपनी न्याय की क्षमता को नष्ट नहीं करना चाहता। इसलिए दाक मधु राजाओं के लिए नहीं था, क्योंकि इससे चेतना चले जाने की संभावना होती है। यही बात बिशप और कलीसिया के परिवेशकों के लिए भी है। यही बात याजकों के लिए पुराने नियम में थी जब वे परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाते थे। उन्हें दाक मधु नहीं पीना था, कहीं वे अन्य प्रभाव के अधीन उसकी सेवा करें। हारून के पुत्र नष्ट हो गए थे क्योंकि उन्होंने अपवित्र आग से बलि चढ़ाई, और परमेश्वर अपरिचित आग नहीं चाहता। अतः लेमुएल की माता भी उसे दाक मधु न पीने के लिए कह रही थी, और वो कहती है, राजाओं को दाक मधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फापता। नीति वचन अध्याय 31 पद 5। ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारें। ऐसा न हो आपके पीने से आपका आत्मज्ञान परिवर्तित हो जाए और आप अपने न्याय में साफ न रह पाओ। नीति वचन अध्याय 31 पद 6 से लेकर 9 तक। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाखमधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण ना करे। गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। लेमुएल की माता अपने पुत्र को उपदेश दे रही है, क्योंकि लेमुएल एक दिन राज गद्दी पर बैठेगा। ये उस न्याय और उत्तरदायित्व के बारे में था जो उसे राजा होते हुए निभाना था। नीति वचन अध्याय 31 पद 10। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। हो सकता है यहां सुलेमान और बैतशेबा बात कर रहे हैं। सुलेमान की बहुत सारी पत्नियों में से शायद कोई अच्छी पत्नी मिली हो, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। इसका उल्लेख इस प्रकार है, नीति वचन अध्याय 31 पद 10 और 11। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। क्या आप अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करते हैं? विश्वास योग्य पत्नी पाना एक महान सौभाग्य है। जब आप अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास करते हैं, आपको शक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बात बात पर प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको उस पर पूरा पूरा भरोसा होता है कि वो वफादार है, चरित्रवान है, ईमानदार है। परंतु अन्य स्त्रियों में आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते। भली स्त्री जिसका मूल्य मूंगे से भी बढ़कर है। नीति वचन अध्याय 31 पद 12 से लेकर 14 तक। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो व्यापार के जहाजों की नाई अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वो विज्ञापनों को देकर सामान खरीदती है कि सस्ता पड़े, और दुकानों से भी अच्छा सामान मोल भाव करके खरीदती है। नीति वचन अध्याय 31 पद 15। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वो एक सिद्ध गृहिणी है। नीति वचन अध्याय 31 पद 15 से लेकर 18 तक। वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है, और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वो अपनी कटी को बल के फेटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। मेरा मतलब निस्संदेह वो एक सिद्ध गृहिणी है। नीति वचन अध्याय 31 पद 19 से लेकर 23 तक। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के संभालने के हाथ बढ़ाती है। वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वो तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। उन दिनों में शहर के फाटक मुख्य स्थान होते थे, क्योंकि फाटकों पर न्याय होता था। जब लोगों के पास कोई वाद विवाद का विषय होता था, या कानून संबंधी या व्यापार संबंधी, तब वे शहर के फाटकों पर आते थे, और जो मनुष्य फाटक पर बैठता था वो शहर का प्रतिष्ठित जन होता था। वे उसके पास न्याय के लिए आते थे। ऐसी स्त्री का पति गणमान्य व्यक्ति होता है, वो शहर के प्रतिष्ठित लोगों के साथ बैठता है। नीति वचन अध्याय 31 पद 24 से लेकर 31 तक। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमर बंद देती है। वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। कितना सुंदर, अति सुंदर पुरस्कार एक भली स्त्री के लिए। वास्तव में एक सुंदर स्त्री जिसे परमेश्वर आदर देता है, क्योंकि वो परमेश्वर का आदर करती है। उसका पति उसकी प्रशंसा करता है। क्या हम सब भाग्यशाली नहीं है कि हमें इतनी सुंदर स्त्रियां मिली हैं? हम परमेश्वर के कितने आभारी हैं। स्त्रियों के द्वारा हमें आशीष मिलती है। वो कैसी मूल्यवान है जिसे आप मूंगों से भी नहीं खरीद सकते। उसका मूल्य इससे कहीं अधिक है। वो अपने पति के लिए बड़ी मूल्यवान है, अपने परिवार और परमेश्वर के लिए भी। प्रभु तेरा धन्यवाद हो ऐसी सद्गुण पत्नी के लिए। मैं अपनी पत्नी के लिए परमेश्वर का बार बार धन्यवाद करता हूं कि वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे परिवार के लिए क्या है। कितना बड़ा सौभाग्य है। जब आप सब अपनी अपनी पत्नी के बारे में सोचते हो जिन्हें परमेश्वर ने आपको दिया, पत्नी एक कीमती मोती है। धर्म शास्त्र में बताया गया है, पत्नी को खुश रखो, उसका पोषण करो, उससे प्यार करो, जैसे मसीह ने कलीसिया को प्यार किया और अपने आप को दे दिया। प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने हमें इस अध्याय में कितना सुंदर दृश्य दिखाया है। लेकिन ये पद जवान स्त्रियों के लिए, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। ये एक ऐसा सत्य है जो बहनों का दिल दुखाता है। ओह, मैं सुंदर नहीं हूं। ऐसा लगता है कि बहुत ही कम स्त्रियां हैं जो अपनी सुंदरता से संतुष्ट है। बहुत सी स्त्रियां स्वयं को बदसूरत महसूस करती है। इस कारण अनेक स्त्रियों में बहुत कम स्त्रियां हैं जो समझती है कि वे सुंदर है, और जो ऐसा समझती है वो प्रायः घृणित है। उनके साथ संगति करना कठिन है, उनका व्यवहार सहा नहीं जा सकता, वो घमंड से भरी होती है। ऐसी स्त्री को आप पसंद नहीं करते, आप उसके साथ निर्वाह नहीं कर सकते, परंतु सच्ची सुंदरता के साथ निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए चिंता ना करें यदि परमेश्वर ने आपको सुंदर मुखड़ा नहीं दिया है, क्योंकि सुंदरता धोखा देने वाली है, वो व्यर्थ है। ये सत्य है। आपने हॉलीवुड की सुंदरियों के बारे में सुना होगा, और उन हॉलीवुड सुंदर रानियों का दिमाग कितना खाली है। कुछ जो ऐसा सोचती और दिखाती है कि वो बहुत सुंदर है और बराबर दर्शाती रहती है, लेकिन जब आप उनकी बातें सुनेंगे तो खाली दिमाग पाएंगे। वो बोलने से पहले कभी नहीं सोचती। हर कोई उन्हें बेवकूफ कहता है। उन्होंने कभी अपने चरित्र का विकास करने का यत्न नहीं किया। वे जो सोचती है कि वे सुंदर है, आप उनको बात करते सुने, वे मूर्खता ही उगलती है। वे सोचती ही नहीं है। मनुष्य की प्रशंसा सुन सुनकर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि कभी चरित्र निर्माण करें, बस व्यर्थ की बातें करना, सुंदरता व्यर्थ है। परंतु वो स्त्री जो परमेश्वर का आदर करती है, जो धार्मिकता का जीवन जीती है, जो प्रभु से प्रेम करती है, उसे ज्यादा सुंदर संसार में कुछ नहीं है। वह स्त्री जो धर्मी है और परमेश्वर से प्रेम करने वाली है, ओह कितनी सुंदर है वो, यही सच्ची सुंदरता है। वह स्त्री जो परमेश्वर का भय मानती है, जिसका सुंदर जीवन प्रभु के साथ मधुर संबंध में है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जवान लड़कों, आप शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हो तो उसके चेहरे की सुंदरता पर मर मिटने से बचना। हो सकता है उनमें कोई निर्बुद्धि स्त्री हो, प्रार्थना करने वाली और अपने आप को मसीह के स्वरूप में बदलने की इच्छा रखने वाली लड़की देखना, तब आपको एक ऐसी पत्नी मिलेगी जो संपूर्ण जीवन वफादारी, प्रेम, चरित्र और मर्यादा को निभाती रहेगी। उसके साथ आप सदा प्रसन्न रहोगे। यही तो आपके सपनों की रानी है, वो प्रशंसा का पात्र होगी। आप जानते हैं परमेश्वर ऐसा भला है कि वो पत्नियों की उनके अपने अपने पति के लिए सर्व सुंदरी बना देता है। ये परमेश्वर का एक गुण है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं बुद्धि के लिए, शिक्षा और ज्ञान के लिए जो इन छोटे नीति वचनों के द्वारा तूने हमें दिया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमने सीखा है कि तेरे वचन के द्वारा कैसे हम जीवित रहते हैं, हमें क्या ढूंढना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। प्रभु, हमारी सहायता कर कि हम तुझे ढूंढे, तेरा राज्य और तेरी धार्मिकता हर संसारिक वस्तु से पहले ढूंढे। प्रभु, हमारे हृदय में अपनी सच्चाइयां छिपा के रख, वो हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन की पूंजी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।